जगन्नाथ का दर्शन हुआ है। जगन्नाथ तो अब दर्शन नहीं देते हैं। जगन्नाथ कौन है आपको सबको पता है? जगन्नाथ और कृष्ण में अंतर क्या है, कौन जानते हैं? जगन्नाथ और कृष्ण में अंतर क्या है बताओ तुम।
जगन्नाथ है द्वारका का कृष्ण, कृष्ण
सब समझा। जगन्नाथ द्वारका में, कृष्ण जब वृंदावन के लिए कृष्ण वृंदावन का विरह अनुभव करता है। विरह का हिंदी क्या है? विरह ये शब्द का प्रयोग होता है, विरह हिंदी ही है विरह। तो वृंदावन के लिए द्वारका के कृष्ण का विरह अवस्था ही के कारण जगन्नाथ के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के ये भगवान भी चेतन है। कल हम क्या विचार कर रहा था, एक विचार था जहां चेतना है वहां आत्मा है, जहां चेतना है वहां वासना है। चेतना बिना वासना हो सकता है? नहीं। और वासना के साथ साथ अनुभूति भी है। अनुभूति का ये अनुभूति का मतलब, अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभव करना। अच्छा हाँ, महसूस ये तो उर्दू अनुभूति का ही उर्दू शब्द है। तो और वहां जहां अनुभूति है वहां इमोशंस हैं। इमोशन का हिंदी क्या है?
भाव।
हाँ भाव, जैसे भाव से भी ये इमोशंस का और गहरा अर्थ होता है जिसको आवेग कहा जाता है। भाव का जो आवेग है उसको भी इमोशन कहता है। भाव है, बल्कि भाव से आवेग का उद्गम होता है। हाँ, तो भाव और आवेग में अंतर क्या है? हाँ पंडित जी आप बताइए, राघव पंडित जी। भाव और आवेग में,
भाव में आके भावकुल हो जाता है, भाव में हो जाता है।
हाँ,
भाव में डूब जाता है तो भाव।
हाँ, जैसे ये अनुभूति का, अनुभूति से भाव भावना और भावना से आवेग, ये सारे सब हृदय की बात है ना। अनुभूति कहाँ से होता है? हृदय से होता है। भाव भी हृदय से होता है, यद्यपि हम कभी कभी मनोभाव भी कहते हैं, परंतु ये जो भाव जो है, जैसे भाव क्या कैसा, जैसे भाव प्रेम का पूर्व अवस्था को भाव कहा जाता है। तो ये प्रेम, ये प्रेम है आवेग का चरम अवस्था, आवेग का चरम अवस्था है प्रेम। और भाव और आवेग का बहुत तरह ये हो सकता है, जैसे इसको भाव को भी 12 प्रकार होता है. भाव का 12 प्रकार, उनमें से 5 है स्थाई भाव और 7 है संचारी भाव. स्थाई भाव क्या है? शांत्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर. ये 5 हैं, ये स्थाई भाव. मतलब स्थाई का मतलब क्या है? जो स्थिर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है. मतलब जो भगवान का नौकर है उसका मन में भाव कैसा भावना है? भगवान के प्रति दास्य, दास्य. और जो भगवान का मित्र है उनकी भगवान के प्रति भाव कैसा है? सख्य, सखा के रूप में. जो भगवान का पिता माता है भगवान के प्रति उनका भावना कैसा है? वात्सल्य. और जो भगवान के प्रेमिक हैं, प्रेमिका हैं, उनके भगवान के प्रति उनका भावना कैसा है? माधुर्य. तो ये जो 5 भाव हैं ये स्थाई हैं. जैसे पिता माता का भावना सखा के जैसा नहीं होगा, भगवान का जो मित्र है, भगवान का जो दोस्त है, उनकी भाव दोस्त की तरह है. जैसे मित्र के साथ मित्र का मन भाव का आदान प्रदान कैसे होता है? सख्य का, दोस्ती. और पिता माता के जो मनोभाव वो भी एक दूसरा तरह है, उसमें वात्सल्य मतलब स्नेह का प्रकाश है. जो नौकर हैं और दोस्त, नौकर और दोस्त में अंतर है. नौकर जैसा, दोस्त जैसा आचरण करते हैं भगवान के साथ, नौकर ऐसा कभी आचरण नहीं करेंगे. पिता माता जैसे भगवान के साथ आचरण करते हैं, दोस्त और नौकर कभी वैसा आचरण नहीं करेंगे. और भगवान का प्रेमिका जैसे आचरण करते हैं पिता माता या दोस्त और नौकर, वैसे भगवान के साथ आचरण नहीं करेंगे. तो ये जो है, ये 5 भाव को स्थाई भाव कहा जाता है. और स्थाई भाव के अतिरिक्त और 7 भाव हैं जो, जिसे संचारी भाव कहा जाता है. स्थाई का मतलब है स्थिर, उसका परिवर्तन नहीं होता है. परंतु संचारी भाव जो है उसका परिवर्तन होता है. वो संचारी भाव कैसा है? हास्य, अद्भुत, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक और करुण. हास्य का मतलब, हास्य का मतलब क्या होता है? मजाक, मजाक, मुस्कुराहट, हंसते हैं. भगवान, भक्तों और भगवान के बीच जब ये भाव का विनिमय होता है तब कभी कभी ऐसे मजाक होता है. ये संपर्क में ये होता है ना, जो दोस्तों में से मजाक होता है. बल्कि नौकर और मालिक के बीच वैसे मजाक नहीं होता है, जोक करते हैं. दोस्तों में से जोक करते, बल्कि पिता माता के साथ जोक नहीं करेंगे. और ऐसे भी हास्य एक संचारी भाव है. ये देखो अनु, तो ये सोच देख रहे हैं इसका संयोग कैसा है. चेतना, अनुभूति, भाव और उसके पश्चात आवेग. जैसे चेतना के कारण अनुभूति होता है. अगर अनुभूति नहीं रहता है तो क्या ऐसे जो हास्य अद्भुत अद्भुत मतलब आश्चर्य भाव, कुछ देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। जैसे एक दिन वृंदावन में जब ग्वाल बालों ने कृष्ण के साथ गाय चरा रहे थे तो एक दावानल आ गया। दावानल को हिंदी में दावानल ही कहते हैं, दावानल। और सरल हिंदी में क्या होता है? कठिन हिंदी तो मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ। एक तो है जंगल की आग, जंगल में आग लग गया था। और ये दावानल का और क्या नाम शब्द प्रयोग हो सकता है? एक तो है दावाग्नि, और एक नाम है बारवानल, बारव अनल। तो ऐसे तो सरल हिंदी में इसका प्रयोग कैसा होगा? जंगल में आग। दावानल ठीक है, बहुत अच्छा। दावानल, संसार दावानल ललित का हम तो हर रोज गाते हैं सुतरंग। अतएव दावानल शब्द का अर्थ सबको ही पता है। तो एक दिन जंगल में आग लग गया था, और ऐसे आग लगा कि चारों तरह से आग लग गया। ऐसा अगर होता कि एक साइड में आग लगा तो दूसरे और निकलने का राह शायद हो सकता था, पर ये जो दावानल हुआ ये सारे चारों तरफ से आ गया था। ये भी कंस का ही एक चक्रांत था कृष्ण को और ग्वाल बाल को मारने के लिए। तो सारे गाय बछड़ा ग्वाल बाल कृष्ण दावानल में ऐसे गिर गया। तो बच्चे लोग कृष्ण के पास आके बोलने लगे कृष्ण रक्षा करो। तो कृष्ण ने बताया ठीक है तुम लोग आंखें बंद कर लो। तो सब कृष्ण को कहते हुए सब आंखें बंद कर लिया, और तब कृष्ण वो दावानल को मुंह में खा लिया करके सारा दावानल को खा लिया। तो जब सब आंखें खोले उसके बाद तब देखा दावानल एकदम खत्म हो गया है। तब सब आश्चर्य हो गए ये कैसे संभव हुआ। तो ये है अद्भुत रस। अच्छा हास्य रस कैसा? हास्य रस का एक दृष्टांत है। एक बार मधुमंगल ने कृष्ण को बताया कृष्ण देखो तुम तो वैश्य हो, कोई कल कहता है कि तुम क्षत्रिय का बेटा भी हो, बल्कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो मुझे सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तब कृष्ण ने बताया देखो जन्म और कर्म इन दोनों में से कर्म जन्म से अधिक है, जन्म से बढ़कर है। आदमी को विचार जन्म के द्वारा नहीं होना चाहिए, कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो ठीक है जन्म के अनुसार तुम ब्राह्मण हो, पर कर्म के अनुसार मैं कौन हूं ये तुमको थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मधुमंगल ने पूछा तो तुम्हारा कर्म कैसा था बताओ थोड़ा सा, क्या किया तुमने क्योंकि तुम ब्राह्मण से भी आगे बढ़कर हो। तब कृष्ण ने बोला देखो जब मैं 7 दिन का था तब पूतना हमको मारने के लिए आई थी, पर मैं उसको खत्म कर दिया। और ऐसे त्रिनावर्तसुर ने भी हमको मारने को आया, और मैं गिरी गोवर्धन का धारण किया था जब मेरा उम्र 7 साल का था, तब मैं गिरी गोवर्धन को धारण किया। मैं कालिया को वश में लाया था, कितना जहरीला भयंकर नाग था कालिया, जिसके कारण सारे जमुना का पानी विष से भर गया था, जहर से भर गया था, उस कालिया को मैं मारा। तो ये थोड़ा बहुत मेरा कार्य का दृष्टांत है, अद्भुत कार्य का दृष्टांत है, अलौकिक कार्य का दृष्टांत है। तो मधुमंगल ने बोला, हाँ देखो तुम कितना दाम्भिक बन गए हो, बाकी लोग सब कुछ करते हैं पर उसका क्रेडिट तुम लेना चाहते हो। सबको पता है कि बच्चे और वृद्ध को देवताओं ने रक्षा करते हैं। हाँ पूतना तुमको मारने को आई थी पर देवताओं ने तुमको रक्षा किया होगा क्योंकि तुम बच्चा था, तब तुम्हारा होश भी नहीं था, 7 दिन का बच्चा क्या होश है। और गिरी गोवर्धन धारण का क्रेडिट तुम लेना चाहते हो पर सबको पता है गिरी गोवर्धन तुम्हारा हाथ पर हिल रहा था, तब सब उसको सपोर्ट दिया, नंद महाराज बलराम सब ने उसको पकड़ा तब तुम, बल्कि और किसी को कुछ कृतित्व न देकर तुम सब सारे कृतित्व तुम लेना चाहते हो, कितना घमंडी हो तुम देखो। और कालिया नाग के कवल में तुम्हारा अवस्था कैसा हुआ था वो सबको ही पता था, तुम कालिया का कॉयल में, कॉयल का क्या बोलते हैं, कुंडली में, कुंडल कालिया का कुंडली में तुम तो खत्म हो गया था, तुम्हारा काला रंग और भी काला हो गया था और तुम्हारा वो अवस्था देखकर माँ यशोदा ने अपना चेतना खो गए बैठे थे, मूर्छित हो गई थी, नंद महाराज ने यमुना के पानी में डूबने का ये कर रहे थे और सारे ब्रजवासियों ने इतना अफेक्टेड हो गए थे, तो मेरा मन में तब कृपा हुआ था कि तुमको किसी तरह रक्षा करना चाहिए। तो उस समय मैंने सर्प निधन मंत्र बोल दिया और वो मंत्र के कारण डर के मारे कालिया ने तुमको छोड़ दिया और भागने का कोशिश किया, तब तुम उसका सर पर चढ़कर तुम अपने क्रेडिट दिखाने लगा। तब कृष्ण ने बोला, ओ ये तो मुझे पता नहीं था, तो मेरा प्रणाम आप ग्रहण कीजिए ब्राह्मण जी। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ और भक्त भगवान के साथ जब मजाक करते हैं, ये मजाक के कारण सबने हंसने लगता था। तो ये है हास्य। तो अद्भुत के बारे में बताएं, वीर जब जब कृष्ण ने कंस का यज्ञस्थली में उपस्थित हुआ और चाणूर और मुष्टिक दो भयंकर दानव ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए, हत्या करने के लिए तैयार हो रहा था, तब ब्रजवासियों ने और बाकी सब लोग बोल रहे थे, ये कैसे मल्ल युद्ध जो होता है वो समान के बड़ा अपने समान बराबर होता है, समान के साथ मल्ल युद्ध होता है, सम ये में होता है, इक्वल सम के साथ बराबर वाले के साथ होता है। बल्कि ये भी एक विशाल दैत्य के साथ ये बच्चे का कैसे मल्ल युद्ध संभव है, तो ऐसे वो लोगों ने कह रहे थे और कोई बिलाप कर रहे थे, रो रहे थे, देखो ये क्या क्या विचार है, कंस कैसी राजा है, देखो ये कैसा विचार है, ये दोनों बच्चे के साथ लड़ाई करने के लिए दानव को भेजा है, मल्ल युद्ध ये कौन किस प्रकार का मल्ल युद्ध हो रहा है। तब कृष्ण और बलराम ने सबको, कृष्ण ने सबको बताया, कोई फिक्र नहीं उसको मैं देख लूंगा। वो असल में वो अब उसका जमराज को दर्शन करने का बहुत शक हुआ है तो उसका मन कामना मैं अब पूर्ण जरूर करूंगा तो ऐसे वीर रस और वीर रस का हास्य अद्भुत वीर रौद्र क्रोध इंद्र ने जब बारिश को भेजा था संबर तक मेघ के साथ और स्वयं ऐरावत पर चढ़कर वज्रों को निक्षेप कर रहा था वृंदावन और ब्रजवासी और ब्रज के सारे प्राणियों को हत्या करने के लिए, तब कृष्ण ने बहुत क्रोधित हो गया और तब कृष्ण ने बोला कि ठीक है मैं उसको भला अच्छा तरह मैं उसको शिक्षा दूंगा। और ऐसे ही वीर रौद्र विभत्स जब कंस को संवाद मिला, कंस ने केशी को भेजा था, केशी डीमन केशी असुर को भेजा था कृष्ण को संहार करने के लिए। बल्कि केशी जब एक घोड़े के रूप में आया तो कृष्ण ने उसको उसका पैर पकड़कर उसको सर पे सर के ऊपर घुमाने लगा, घुमाते घुमाते थोड़ा बाद जब छोड़ दिया तो केशी का शरीर एकदम वृंदावन से आकर मथुरा में पहुंचा और कंस के सामने गिर गया। तो कंस ने जब देखा उसको, तब उसका और शरीर का कुछ स्थिति नहीं था, मांस और हड्डी वगैरह सब कुछ मिलकर एक पिंड बन गया था। तो ये है विभत्स, ये जो दृश्य था कंस के लिए बहुत विभत्स था। जब कृष्ण ने विभत्स इज गास्टली, जमुना यू वांट टू नो द यू वांट विभत्स गास्टली गास्टली ओके आई शुड से इन इंग्लिश आल्सो, यू गॉट द थिंग, ह्यूमर surprise, wonder, chivalry, anger, ghastly, then next is bhayanak, bhay। कंस ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने, जब कंस ने जब सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ का जन्म हुआ है, तो सुनते ही कंस का बाल ऐसे खड़ा हो गया भय की मारे, ओ केवल शरीर का ही नहीं, उसका लंबा बाल था क्षत्रिय ने, जैसे सरदार लोग जैसे रखते हैं लंबा बाल, वो सारे बाल ऐसे लंबा हो गए तो ये है भयानक भय का उद्रेक होता है और करुण। श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर चले जा रहे थे तो ब्रज गोपिया का जो स्थिति हुआ था वो बहुत ही करुण ये था। तो ये साथ हैं संचारी भाव, इस भाव का स्थिति स्थायी स्थिति हर समय के लिए नहीं रहता है, इसका परिवर्तन होता है। जब भय से हास्य हो सकता है, किस कारण भय हो सकता है, और भय जब जैसे भय से हास्य हो सकता है, रौद्र या क्रोध से अद्भुत भाव ये हो सकता है, तो ऐसे भाव का परिवर्तन ये जो संचारी भाव है इसका परिवर्तन होता है। बल्कि ये जो भाव का जो विनिमय होता है, ये भाव का विनिमय से ही, विनिमय का जो प्रकाश है उसको आवेग कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण के विरह के कारण गोपियां ने रोने लगी, भय के मारे जैसे मैं बोला कंस का बाल खड़ा हो गया था, तो ये जो इसका जो आवेग का जो प्रकाश, भाव का प्रकाश से आवेग, और भाव का जब हाँ प्रकाश और क्रिया से आवेग का, और ये है अनुभूति चेतना और संपर्क का आधार। अगर ये नहीं रहता तो जीवन में कोई स्वाद नहीं रहता था। तो इसलिए इसको इस स्वाद के किससे होता है, रस के द्वारा स्वाद होता है, आस्वादन होता है, स्वाद के आस्वादन रस के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको रस। और श्री कृष्ण ही समस्त रस का आधार है, श्रोत रस वैसा, श्री कृष्ण रसमय है, श्री कृष्ण समस्त रस का श्रोत है। इसलिए श्री कृष्ण को वर्णन हुआ कैसे, रस सागर नागर भूप वरण, रस के सागर। और ये रस कौन सी रस है, रसगुल्ला का रस नहीं ये रस है, ये अनुभूति का रस। और कृष्ण भावना जो है ये अनुभूति का ही विचार है, अनुभव से ही हम आनंद चाहते हैं। आनंद का अनुभव कैसे होता है, ये रस का जब विनिमय होता है, विशेष रूप से जब अनुकूल भाव से रस का विनिमय होता है तब उससे आनंद का प्रकाश होता है, प्राप्ति होता है। तो हम लोग यहां क्यों आए हैं, रस आस्वादन करने के लिए। तो रस आस्वादन कैसे करेंगे, रस आस्वादन से क्या कष्ट होता है या मजा होता है, रस के द्वारा, रस के माध्यम ही आनंद का अनुभूति होता है। हमें हर समय विचार करना चाहिए कि ये कृष्ण भक्ति के मार्ग में जो हम आए हैं, इसका असल उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। भगवत के, भगवान के साथ संपर्क स्थापना के द्वारा हम ये अनुभूति का जो आस्वादन होगा, उससे, उसके माध्यम ही आनंद का प्राप्ति हो सकता है। हमें सब हर समय इस अनुभूति को आस्वादन करने का कोशिश करना चाहिए। भक्त का जीवन आनंदमय है, इसलिए भक्त विमर्श नहीं होते। विमर्श का मतलब, विमर्श डिप्रेस्ड, निरानंद नहीं होना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं आनंद के साथ करना चाहिए। कल मैं ऐसे विचार कर रहा था, जब आदमी नौकरी करने को जाता है, नौकरी करता है तो उसको आनंद होता है, सोचता है कि आनंद मिलेगा, परंतु वो सोचता है कब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, कब 5 बजेगा और छुट्टी होगा, कब शुक्रवार होगा, हमको शनि रविवार 2 दिन के लिए छुट्टी मिलेगा। ये इसका अर्थ क्या है, जो स्थिति में वो लोग हैं उस स्थिति में उन्होंने रहना नहीं चाहते, परंतु जिस स्थिति में हमें आनंद प्राप्ति होता है उस स्थिति में हम हर समय रहना चाहते हैं, है ना। तो उस स्थिति का प्राप्ति कैसे, किस तरह हो सकता है, उस स्थिति का प्राप्ति भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से और भगवान को सेवा करने के द्वारा ही केवल संभव हो सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं होगा। भक्ति मार्ग में हमें हर समय आनंद में रहना चाहिए, केवल मजे में ही नहीं, आनंद में रहना चाहिए। और हमें हर समय यह विचार करना चाहिए कैसे हर व्यक्ति के लिए यह स्थिति आनंदमय हो सके। विशेष रूप से जो मंदिर का जो हेड्स हैं, उनको देखना चाहिए कि सबको कैसे आनंद मिल सकता है, ठीक है। जो कुछ हम करते हैं आनंद के साथ करना चाहिए, जो कुछ हम चाहते हैं आनंद के साथ उसका प्राप्त होना चाहिए। सुबह मंगल आरती में आने में आनंद होता है या कष्ट होता है? आनंद होता है, बहुत अच्छा। भगवान को नाम जपने में आनंद होता है या कष्ट होता है? सही, सच। कितने माला जपते हो? 16 माला, बहुत अच्छा। तो आनंद अगर होता है तो हर समय जपना चाहिए। भागवतम क्लास में आनंद होता है, बैठने में यह दिक्कत होता है? आनंद होता है, बहुत अच्छा। भगवान को प्रसाद सेवा करने में, वो सेवा करने का पहले तो प्रसाद पकाना के बात होता है, भगवान के प्रसाद बनाने में आनंद होता है, भगवान को प्रसाद बांटने में आनंद होता है, भगवान को प्रसाद सेवा करने में आनंद होता है, भगवान का बर्तन धोने में, भगवान को मंदिर साफ करने में, अच्छा, और भगवान के बारे में सुनने में बहुत आनंद होता है, भगवान को याद करने में, हाँ, भगवान को याद करने में भी आनंद होना चाहिए। ऐसे जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए ही करना चाहिए, और भगवान के लिए जब हम कुछ करते हैं तब आनंद प्राप्ति होता है। और इसलिए भक्त संघ का इतना जरूरत है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तब स्वाभाविक रूप से ही आनंद प्राप्ति होता है। जो कुछ हम आनंद के साथ करते हैं तो हम करना ही चाहते हैं, करते ही रहना चाहते हैं।